उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी
समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी सुनने वालों को चंद्रिका जोशी का नमस्कार। पूर्वोत्तर जब हम कहते हैं तो हमारा आशय होता है देश के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से, जिसमें कुल 8 भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं, और यही हैं हमारे अष्टलक्ष्मी राज्य। सिक्किम के अतिरिक्त बाकी एक साथ जुड़े राज्यों को 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। मनोरम घाटियां, घने जंगल, झरने, हरे भरे चाय के बागान, वन्य जीवन, विभिन्न वनस्पतियां और लोग, साथ ही उनकी संस्कृति, परंपराएं, विरासत, भोजन की विशिष्ट पहचान जहां मन को आनंद देते हैं, वहां संकेत में ये भी बता देते हैं कि आप कहीं और नहीं, आप हैं देश के प्यारे और सुंदर से पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर राज्यों में अपार क्षमता है, कौशल है और साथ ही है उनकी अद्भुत विरासत। पूर्वोत्तर की इसी शक्ति पर देश गर्व करता है।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये, मोगरी जगाती ओ मोगरी जगाती। खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये, मोगरी जगाती ओ मोगरी जगाती।
इस सप्ताह देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई और पूर्वोत्तर में भी इसे धूमधाम से मनाया गया। इसे बुद्ध जयंती या वैसाख के नाम से भी जाना जाता है। देश के पूर्वोत्तर में इसे धूमधाम से मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा के दौरान माहौल बहुत मनमोहक होता है। रंग बिरंगी चारों तरफ सजावट, लालटेन और प्रार्थना वाले रंग बिरंगे झंडे घरों और सड़कों पर सजाए जाते हैं। लोग अपनी पारंपरिक पोशाक और परिधान पहनते हैं और घर के नजदीक मठों और मंदिरों में प्रार्थना करते हैं और भगवान बुद्ध के सम्मान में दीपक जलाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो चलिए आज हम आपको पूर्वोत्तर के कुछ प्रमुख बौद्ध मठ और मंदिरों की ओर लिए चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं तवांग मठ और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये महायान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लगभग 500 लामा और बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इस मठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने की थी और माना ये जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े मठों में से एक है। तवांग मठ को गेल्डेन नामग्याल लहात्से के नाम से भी जाना जाता है और इसका अर्थ होता है सुंदर साफ रात में दिव्य स्वर्ग। ये की घाटियों और पहाड़ों के अद्भुत दृश्यों के साथ एक बेहद खूबसूरत जगह है। धर्म ग्रंथों और कलाकृतियों का समृद्ध संग्रह भी यहाँ है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के 108 खंड भी यहाँ रखे गए हैं। तवांग मठ की अनूठी विशेषताओं में से एक है इसका वार्षिक उत्सव तोग्या। ये हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है। ये त्योहार एक ऐसा उत्सव है जिसमें भिक्षु पारंपरिक पोशाक पहनकर पवित्र नृत्य करते हैं और इसे चाम नाम से जाना जाता है। ये त्योहार कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। सिक्किम में गैंगटोक शहर के पास ही एक मठ स्थित है, इसे रूमटेक मठ कहा जाता है। ये देश का बहुत खूबसूरत बौद्ध मठ कहा जा सकता है। इसकी स्थापना 1960 के दशक में 16वें कर्मापा रंगजंग रिगपे दोर्जी ने की थी। यहाँ 16वीं करमापा की मूर्ति है और साथ ही कई मूल्यवान अवशेषों का संग्रह भी है। इस मठ में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियाँ और ग्रंथ रखे गए हैं। आप देखेंगे इसे पारंपरिक तिब्बती शैली में डिजाइन किया गया है और सुंदर परिदृश्य यानी आसपास बगीचे हैं और आसपास पहाड़ियाँ हैं जो हरी भरी हैं, तो बेहद सुरम्य दृश्यों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। सिक्किम में गैंगटॉक शहर के सामने ही एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है एंची मठ, जो प्रसिद्ध बौद्ध पूजा स्थल है। मठ की सुंदर वास्तुकला पारंपरिक है और ये तिब्बत और सिक्किम की शैलियों को आपस में जोड़ती भी दिखाई देती है। मठ के प्रार्थना कक्ष में निंगपा परंपरा के संस्थापक गुरु रिनपोचे की एक बड़ी मूर्ति है। सिक्किम में होडांग शहर में स्थित होडांग मठ एक प्रसिद्ध पूजा स्थल कहा जा सकता है। ये बौद्ध मठ सुंदर पेलिंग घाटी की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मठ की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी और ये तिब्बती बौद्ध धर्म की काग्यू परंपरा का केंद्र है। इसमें लगभग 250 लामा और बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं। यहाँ प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों और कलाकृतियों का समृद्ध संग्रह है और इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। 17वीं शताब्दी में लामा लहत्सुन चेम्पो द्वारा स्थापित सांगा छोलिंग मठ सिक्किम के पेलिंग शहर में स्थित है और तिब्बती बौद्ध धर्म की निंगमा परंपरा का ये महत्वपूर्ण केंद्र है। सांगा छोलिंग मठ हर वर्ष जनवरी या फरवरी में अपना वार्षिक उत्सव बुमचू मनाता है। ये त्योहार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें भिक्षु पवित्र नृत्य करते हैं और भगवान बुद्ध की प्रार्थना करते हैं। सिक्किम के पेलिंग शहर में स्थित है पेमा यांगसे मठ। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई और ये तिब्बती बौद्ध धर्म की निंगम्या परंपरा का केंद्र माना जाता है, जिसे भगवान बुद्ध की पवित्रता और दिव्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। एक और मठ है, ये पारंपरिक मठ न होते हुए भी बेहद सुंदर बौद्ध परिसर है और इसे शाक्यमुनि परिसर कहते हैं। ये मणिपुर के इम्फाल शहर में है। ये परिसर कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का घर है, जिसमें शाक्यमुनि मंदिर, फायरमैन बाजार और इम्फाल शांति संग्रहालय शामिल है। शाक्यमुनि मंदिर परिसर में सबसे महत्वपूर्ण है बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति। मंदिर की अनूठी विशेषता इसकी सुंदर वास्तुकला है जो पारंपरिक मणिपुर शैली लिखी है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का स्मरण करवाती है। देश के साथ ही साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में इसे धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले हम चलते हैं नागालैंड, जहां आलू महोत्सव को कोहिमा जिले के जाखामा गांव में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में जैविक आलू की खेती को प्रोत्साहन देना और साथ में उसे अवसर और मान्यता प्रदान करना भी है। नागालैंड राज्य के लिए अपनी तरह के इस पहले कार्यक्रम में कोहिमा जिले के दक्षिणी आंगामी क्षेत्र के जाखामा गांव में आलू उत्सव आयोजित किया गया और समान विचारधारा वाले लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित यह आलू महोत्सव न सिर्फ जाखामा गांव और दक्षिणी आंगामी क्षेत्र के स्थानीय किसानों के लिए बल्कि समूचे नागालैंड के अन्य जिलों के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा मंच है। ये त्योहार आलू की फसल के समय के साथ मेल खाता है, क्योंकि आलू की कटाई के दो समय होते हैं, यानी कि आलू की पैदावार की कटाई के समय आलू के महोत्सव का आयोजन किया जाता है। धान के खेतों में इसकी खेती जनवरी में की जाती है और राज्य के जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें अप्रैल से सितंबर के आसपास आलू की खेती की जाती है। आयोजक का लक्ष्य कृषि आधारित उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देकर और क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के माध्यम से मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास को सुविधाजनक बनाकर किसानों की आय बढ़ाना है। उनका उद्देश्य किसानों में उद्यमशीलता कौशल, व्यवसाय प्रबंधन और विपणन तकनीकों को अपनाने के साथ ही स्थायी बाजार संपर्क प्रदान करना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों तक किसानों की पहुँच में सुधार करना। करना है। विक्रेताओं द्वारा आलू की खेती का प्रदर्शन करने के अलावा आलू की किस्मों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। हम और आप सब जानते हैं कि गर्मियां आते ही हमारे पसंदीदा फल आम का मौसम शुरू हो जाता है और आम अपने विशिष्ट स्वाद के लिए देश में शायद सबसे अधिक मांग वाले फलों में से एक है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, सबको ये समान रूप से पसंद आता है और ये फल देश और विदेश के बाजारों को भी आकर्षित करता है।
कम समर एंड द डिमांड फॉर वन ऑफ द लशियस फ्रूट मैंगो स्काई रॉकेट्स इन द मार्केट। त्रिपुरा विच इज होम टू सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ मैंगोज इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आम्रपाली एंड मल्लिका वेराइटीज ऑफ द फ्रूट।
त्रिपुरा जो रबर, सुपारी और बांस के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहीं त्रिपुरा विभिन्न प्रकार के आमों का उत्पादन भी करता है। राज्य के सिपाहीजाला जिले के दूर दूर के कथलिया ग्रामीण विकास खंड में आम किसान इस स्वादिष्ट फल के विभिन्न प्रकार के उत्पादन कर रहे हैं। कथलिया आरडी ब्लॉक के निर्भयपुर गांव में एक किसान ने 2 हेक्टेयर भूमि में फैली नर्सरी और आम के बागान के माध्यम से आम की इस विशेष किस्म को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमजद रहमान ने अपने पिता अब्दुल रहमान की कहानी सुनाते हुए बताया कि उनके पिता ने 2003 से आम की खेती शुरू की और अपनी नर्सरी में आम्रपाली, हिमसागर और मल्लिका किस्म के पौधे भी बेचे। इस व्यवसाय में 2 दशक से अधिक समय तक अब्दुल रहमान लगे रहे और आज तक भी वो त्रिपुरा और उसके आसपास लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के पौधे बेचे।
मैंने तो नर्सरी किया था 2003 साल से, मेरे पिताजी नर्सरी किया था, नर्सरी से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन कलम भी लगा रहा हूँ तो बहुत अच्छा चल रही थी। पहले तो 15-20 साल तो अच्छा चल रहा, गवर्नमेंट ले रहे, पब्लिक डिलीवरी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा दे रहा हूँ। मेरे पिताजी मेघालय पे ट्रेनिंग किया था, तो अगरतला नागेश्वरा पे ज्यादा बार ट्रेनिंग किया था, हमने भी गया था साथ में, तो अच्छा तरफ से ट्रेनिंग सीख लिया था। तो उसका अनुसार में मैंने जो काम किया था बहुत अच्छा तरफ से सफल आया।
गर्मियां आते ही बाजार में सबसे स्वादिष्ट फलों में से एक आम की मांग आसमान छूने लगती है। आम की अलग अलग प्रजातियां देश के विभिन्न कोनों में उगाई जाती हैं। लेकिन त्रिपुरा जो कि आम की कुछ किस्मों का घर कहा जा सकता है, यहाँ आम्रपाली और मल्लिका किस्म के फलों के उत्पादन के लिए इसे जाना जाता है।
अरे यहाँ पर आम्रपाली और मल्लिका और हिमसागर तीनों भी है, और भी चीज थी लेकिन जो अच्छा आम है वो रहने दिया और जो थोड़ा खराब है वो काट दिया।
आम की इन 2 किस्मों के उत्पादन और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में अब्दुल रहमान के कड़े प्रयास और उनकी कड़ी मेहनत आने वाले दिनों में अवश्य ही आम के कई उत्पादकों को प्रेरित करेगी।
तो मेरे तो जो मदर प्लान जो आम रहने वाला और कलम लगाने वाला है तो 2 हेक्टेयर है, और नर्सरी करने वाला तो वो तो है जो 50-60 हजार पेड़ लगा सकता हो इस तरह की जमीन है। आम तो बहुत ज्यादा देता है, तो ये सर वेदर की बताना पड़ता है। वेदर जो अच्छा होता है तो फलन ज्यादा होता है, लेकिन वेदर खराब होता है तो बारिश कमती होता है तो फलन कमती हो जाता है।
और आप ये तो मानेंगे ही कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितनी दृढ़ता और कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी।
हर साल में तो आम तो 4-5 लाख का बेचता हूँ, तो पैर बेचता हूँ ज्यादा, पैर बिकता है तो पब्लिक सेल में 10-15 ऐसे ऐसे करके लेके जाते हैं, ज्यादा लेके जाते हैं, पब्लिक सेल 20-30 हजार भी ऐसे भी ले जाता है। ज्यादा डिमांड तो त्रिपुरा में तो हम दे रहे हैं, बाहर का जा रहे नहीं जा रहे, उधर ही चलते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है।
कुणाल शिंदे, आकाशवाणी अगरतला।
बीते सप्ताह भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा 14 तारीख तक चलने वाली भारत नेपाल फाउंडेशन की बैठक में भाग लेने के लिए सिक्किम के पाक्योंग पहुंचे। रंगपो सुविधा केंद्र में उनके आगमन पर राजदूत और उनकी पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। रंगपो नगर पंचायत के अध्यक्ष संजीव खाती और सिक्किम पर्यटन विभाग के उपनिदेशक सुषमा प्रधान सहित विभाग के सभी अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। सिक्किम जो अपने मनमोहक परिदृश्यों और प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, अपने पर्यावरणीय प्रयासों के लिए भी सुर्खियों में है। सिक्किम को सरकार द्वारा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के खिताब से सम्मानित किया गया है। ये मान्यता पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण के प्रति सिक्किम के समर्पण के प्रमाण के रूप में सामने आती है।
Sikkim has been honored with the prestigious title of Best State in the Environment Education Program by the Government of India. This recognition comes as a testament to Sikkim's dedication to environmental education and conservation. The award was presented during the National Review Meeting held in New Delhi by Namita Prasad, Joint Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया।
एक्सेप्टिंग द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ सिक्किम वर राजन प्रधान सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर एंड लक्ष्मण दरनाल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। सिक्किम ऑल्सो शोकेस इज क्रिएटिव टैलेंट बाय विनिंग द ऑफिशियल लोगो कॉम्पिटिशन फॉर द रिवैम्प्ड एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम अमंग हंड्रेड्स ऑफ सबमिशन फ्रॉम अक्रॉस the country Sikkim entry stood out.
देश भर से आए सैकड़ों आवेदनों को देखने के बाद सिक्किम की प्रविष्टि सबसे प्रमुख रही। ये पुरस्कार जो है इसमें एक प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और कई अन्य उपहार शामिल हैं।
विनिंग लोगो अनफील्ड ड्यूरिंग द इवेंट रिफ्लेक्ट Sikkim commitment to environmental awareness and sustainability. The award, which include a certificate, trophy and gift hamper, was received by the forest representative Diliram Dulal, Akashvani News, Gangtok.
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक ने कहा कि उभरता हुआ भारत काफी हद तक मजबूत पेशेवर सशस्त्र बलों पर निर्भर होगा। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में लेफ्टिनेंट जनरल पी एस भगत स्मृति व्याख्यान में भाग लेते हुए ये बात कही कि युद्ध के बदलते हुए स्वरूप के अनुसार सशस्त्र बलों में परिवर्तन की बारीकियां, एकीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में अनिवार्य प्रयास, साइबर युद्ध का मुकाबला करने के लिए नवीनतम कार्यप्रणाली और ग्रे जोन प्रौद्योगिकियों का समावेश, दूरदर्शी धारणा प्रबंधन और एकीकरण का भी सुझाव दिया। सिक्किम में बीते सप्ताह एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें वीर नारियों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और अन्य प्रतिष्ठित पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और साथ ही उनकी चिंताओं के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त व्हीलचेयर वितरण, नेत्र शिविर और बैंकिंग सहायता के लिए भी प्रावधान किए गए। लहरदार पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और हल्का सा कल कल नाद करती नदियों और आकर्षक मनमोहक वातावरण के साथ देश के पूर्वोत्तर के राज्य अब दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुके हैं। ये सभी राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। पर्यटक यहाँ मन बनाकर आते हैं, साथ ही लंबी पैदल यात्राएं करते हैं और ट्रैकिंग के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी यहाँ के कुछ स्थानों को वे बेहद पसंद करते हैं। यहाँ पर जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में तथा ऐतिहासिक प्राचीन इमारतों को और मंदिरों के साथ ही बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों को सहज ही में देखा जा सकता है। यदि आप देश के इस पूर्वी भूभाग को देखने का मन बना रहे हैं तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रमुख जगहों के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पूर्वोत्तर डायरी। अब यहाँ से हम आपको मेघालय में चेरापूंजी लिए चलते हैं, जो कई तरह की चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का रूट ब्रिज इसका मुख्य आकर्षण है। शहर के चारों ओर स्थित इन पुलों का निर्माण मानवीय सरलता और प्रकृति के लिए एक चमत्कार की तरह दिखाई देता है। इन पुलों पर चलना आपके लिए एक यादगार अनुभव रहेगा। मेघालय में शिलांग का अगर जिक्र करें तो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये बहुत ही प्यारा शहर है। शिलांग अपने आकर्षक दृश्यों और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई करीब 1496 मीटर है और यहाँ तक पहुँचने वाला ये पहाड़ी शहर अपने सम शीतोष्ण वातावरण के कारण साल भर यहाँ पर एक बहुत सुंदर मौसम एक सार मौसम रहता है। कभी कभार होने वाली बूंदाबांदी और शीतल ठंडी हवा से इस हिल स्टेशन की यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। और एक बात और बताएं आपको, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले मूल रूप से क्यारी, मालीम, महरम, मलई, सोहमत, भोवाल और लैंग्रिम जनजाति के वंशज हैं। अब हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ की सूची में सबसे पहले जो नाम है वो है जीरो का। जीरो एक विशिष्ट जनजातीय समूह का जन्म स्थान कहा जा सकता है। यहाँ सुखद वातावरण और शांति से रहने वालों के लिए सुंदर आश्रय स्थल है। आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के एक पुराने शहर जीरो को अपना घर कहती है। यहाँ चीड़ की पहाड़ियाँ हैं और चावल के खेत हैं। जीरो का मौसम साल भर सुखद रहता है। त्रिपुरा की बात करें तो हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा के एकमात्र महानगर अगरतला की ओर। पर्यटकों को अगरतला की शांत जीवन शैली और छोटे शहरों में रहने का आनंद यहाँ मिलता है। इस शहर में विशेष रूप से महलों और स्मारकों को अपने शानदार अतीत को दिखाने के लिए जाना जाता है। इसके हाथ से बुने वस्त्र और बांस के शिल्प दोनों ही के लिए प्रसिद्ध है। अगरतला में सभी के लिए कुछ न कुछ अवश्य है। भले ही ये पूर्वोत्तर भारत में एक पसंदीदा अवकाश स्थल कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ रहते हुए आप स्थानीय व्यंजनों को अवश्य आजमा सकते हैं। अब हम रुख करते हैं मेघालय का। तो सबसे पहले बात करेंगे उमियम झील की। उमियम झील के रूप में जाने जाने वाला ये मनोरम कृत्रिम और मानव निर्मित जलाशय है, जो पूर्वोत्तर में मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग से करीब 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पनबिजली उत्पादन के लिए एक बांध बनने के बाद झील का यहाँ निर्माण किया गया। इस शांत झील का क्षेत्रफल अगर हम आपको बताएं तो लगभग 222 वर्ग किलोमीटर है और ये घने शंकु के आकार के पेड़ों से घिरी हुई है। इस झील का क्षेत्रफल इतना है कि इसे बरमुडा या सैन मैरिनो के क्षेत्रफल से चार गुना बड़ा कहा जाता है। ये सबसे सुरम्य पूर्वी खासी पहाड़ियाँ जो हरी भरी हरियाली से आच्छादित हैं, उनसे घिरा हुआ है। मेघालय आने वाले अधिकांश पर्यटक तस्वीर लेने और इत्मीनान से यहाँ नाव की सवारी करने के लिए उमियम झील पर अवश्य ही रुकते हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। हिमालय के भव्य प्राकृतिक स्थानों में से एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को जीवन रेखा प्रदान करता है सेला दर्रा और साथ ही उतनी ही दिव्य है सेला झील। दोनों मिलकर अपनी रहस्यमयी खूबसूरती से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पूर्वोत्तर के लिए प्रकृति के सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए एक वरदान की तरह है। ये राज्य के तवांग जिले को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। सेला दर्रा एक ऐसी सुंदर लुभावनी जगह है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और अपने भौगोलिक महत्व के अलावा पूर्वी हिमालय श्रृंखला के कुछ बेहद आश्चर्यजनक दृश्य और बेहद सुंदर मनोरम नज़ारे प्रस्तुत करती है। सेला झील अरुणाचल की सबसे आश्चर्यजनक झीलों में से एक है और ये पहाड़ी दर्रे में स्थित है। इसी तरह से हम जिक्र करना चाहेंगे नागालैंड का। नागालैंड का तोफेमा गांव एक विरासत गांव है जिसे नागा लोगों की परंपराओं और जीवन के तरीके को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। ये कोहिमा से करीब ही स्थित है। यहां आकर आप एक जनजातीय आदिवासी झोपड़ी में एक रात अवश्य बिताएं और साथ ही यहां का जो स्थानीय भोजन है वो अवश्य करें और स्थानीय लोगों की कहानियां और गीतों को सुनने के लिए तोफेमा गांव में समय अवश्य बिताएं। अब हम यहां से चलेंगे असम की ओर तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम चलते हैं। यहां 3001 सींग वाले गैंडे बचे हैं। उनमें से लगभग 2000 असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान में सफारी करने के दौरान उन्हें देखना एक अनूठा अनुभव रहता है।
बाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरी आही से प्रकाशी समन्वय अर्थ महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत युग धरी आही से प्रकाशी समन्वय अर्थ महाबाहु ब्रह्मपुत्र। कुदूर कन्न कुबुजरे परा बार भूया आहिसिले कई वंशते शंकर देव इयाते जन्मिले।
इस बीच कार्यक्रम का समय समाप्त की ओर है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnhdtalks@gmail.com और आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044
9289094044।
और अब अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी।
সিতে খরায়ে ঘাততে কতরু আগসিলে জাতি ধর্ম ভাষা সবাকে সবে প্রেমেরে বাঁধিলে বিরাট পুত্র বিষ্ণু রাবায় মাটির কৃষ্টি জিয়ালে সমন্বয়ের দেখুয়ালে কত প্রকাশত স্ফূর্ত মহাবাহু ब्रह्मपुत्र।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायल।